विनीत भी पीछे बैठा अयांश की ओर देख रहा था। जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। आरवी का प्लान सही लगा, तभी इसका साथ दे रहा हूँ। अयांश, आई होप आज सच सामने आ ही जाए। सॉरी यार, पहली बार बिन बताए कुछ कर रहा हूँ, पर टीम नहीं बदली मैंने। आरवी का साथ दे रहा हूँ, इसमें भी मैं तेरा ही भला सोच रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जिससे तू मोहब्बत कर बैठा है वो तेरे लिए नफ़रत बनकर ना रहे। जो भी वजह है वो ज़्यादा बड़ी ना हो। एक मौका मिले तुम दोनों को, सब सही हो और तुम दोनों साथ हो जाओ, बस। तभी अयांश ने गाड़ी मेंटल हॉस्पिटल के सामने रोकी। विनीत हैरान होते हुए बोला, मेंटल हॉस्पिटल? यहाँ क्या है अयांश? आरवी अयांश की तरफ देख रही थी। तभी अयांश गाड़ी से बाहर निकला और आरवी की साइड आकर उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाला और अंदर की तरफ बढ़ गया। विनीत भी पीछे पीछे तेजी से चल रहा था। अंदर पहुंचते ही एक कमरे के अंदर आरवी को ले गया और अयांश ने आरवी को आगे की ओर धक्का देकर छोड़ दिया, जिससे वो सामने लगी कांच की दीवार से जा लगी। आह, ये देख! आरवी का ये शब्द सुनते ही विनीत के कदम उनकी ओर आते आते दरवाजे पर ही रुक गए, जो उनके पीछे पीछे वहां चला आया था। आरवी ने उस कांच की दीवार से खुद को संभाला, अपनी बाहें सहलाती हुई मुड़कर अयांश की ओर हैरानी से देखा। तो अयांश ने वापस उसे उस कांच की दीवार की ओर घुमाया और पीछे खड़ा गुस्से से बोला, देखो उस तरफ, तुम्हारे गुनाहों की सजा किस कदर कोई पा रहा है। ये सुनते ही आरवी ने कांच की दीवार से दूसरी तरफ देखा तो एक मेडिकल रूम था, जिसमें मेंटली पेशेंट के ट्रीटमेंट की सब चीजें रखी थीं और बेड पर एक लड़की बैठी थी जो बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी। कभी बालों से खेल रही थी तो कभी अपने हाथों की उंगलियों को हाथों में उलझा रही थी। उम्र में बड़ी पर देखने में किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। जिसे एक नर्स फल खिला रही थी तो दूसरी नर्स उसकी दवाइयां निकालने में व्यस्त थी। बेड पर बैठी लड़की एप्पल कभी खा रही थी तो कभी नर्स के ऊपर फेंक ताली बजाकर हंस रही थी। नर्स उसे ऐसा करने से मना करती तो मुंह बनाकर उस नर्स की ओर घूरते हुए फिर एप्पल खाने लगी। ये देख आरवी हैरानी से उस लड़की की ओर देखे जा रही थी, शायद उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी आरवी के कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गए और उसकी पीठ अयांश के सीने से जा लगी। वो फैली आंखों से उस लड़की की ओर एकटक देखती रही। तभी आरवी के मुंह से एक नाम धीरे से निकला, वह वर्तिका। तभी अयांश ने बाहें पकड़ आरवी को अपनी तरफ घुमाया और बाहों से पकड़कर चिल्लाते हुए बोला, ये सब तुम्हारा क्या धरा है? तुम्हारी वजह से देखो क्या हालत हो गई है इसकी। आज इसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। क्या थी और क्या बनाकर रख दिया तुमने इसे? जिसने इसकी जिंदगी खराब करके रख दी वो हो तुम, आरवी, तुम। आरवी अयांश की ओर देख कुछ बोल पाती कि अयांश ने फिर आरवी को उस कांच की दीवार पर धकेल दिया। देखो अच्छे से, देखो अपना किया, अपनी आंखों से देखो। अयांश को ये सब कहते देख और आरवी को इतना हैरान देख विनीत धीरे धीरे चलता हुआ उस शीशे की दीवार के पास आया। जैसे ही विनीत ने अयांश के चेहरे की ओर देखते हुए कांच की दीवार की दूसरी तरफ देखा, विनीत छटका खाकर पीछे जमीन पर जा गिरा। अयांश विनीत को संभालने के लिए बढ़ा, तभी विनीत की आंखों से आंसू चल पड़े और वो उस ओर उंगली करते हुए बोला, वर्तू दी, अयांश दी, अयांश मेरी बहन जिंदा है अयांश? पर ये तो मुझे, हमें छोड़कर चली गई थी ना अयांश, बोलो ना ये यहाँ कैसे, क्यों? वर्तू दी जिंदा है अयांश? अयांश की ओर रोते हुए देखते हुए, तभी अयांश ने विनीत का चेहरा अपने हाथों में भरा। हाँ विनीत, जिंदा है तुम्हारी बहन, जिंदा है। यहाँ उसका इलाज चल रहा है इसलिए यहाँ रखा है उसे। आरवी उन दोनों की ओर देखते हुए हैरानी से बोली, वर्तिका विनीत की बहन है? विनीत वर्तिका की ओर देखते हुए जल्दी से नीचे से उठा और कांच की दीवार पर हथेली रखते हुए बोला, क्या हुआ है अयांश मेरी दी को? ये जिंदा है तो वो सब क्यों हुआ उस वक्त, और मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में? तुमने बताया क्यों नहीं? अयांश नीचे से उठा और विनीत के कंधे पर हाथ रख आरवी की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, किसी ने जिंदा जी मारने की कोशिश की थी वर्तिका को और ऐसी हालत में लाकर छोड़ दिया कि तुझे पता चलता उस वक्त तो तू सह नहीं पाता, ना संभल पाता। मुझे तुम्हें और वर्तिका दोनों को संभालना था, कैसे बताता तुम्हें? जो अपनी बहन की एक खरोच बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो उसे जिंदा जी मरता कैसे देख पाता, इसलिए नहीं बता पाया, छुपा कर रखा। जानता हूँ ये सही नहीं था, तुम भाई हो, पर एक भाई को ये सब करना पड़ा। विनीत नम आंखों से वर्तिका की ओर देखते हुए। तभी विनीत अयांश की ओर मुड़ा और उसके सीने से लगकर सिसकियां भरता हुआ रो पड़ा। अयांश उसे कसकर अपने सीने से लगा लेता है, पर अयांश की नजरें उस वक्त आरवी को इस तरह घूर रही थीं, जैसे कह रही हूँ तुम एक की नहीं सबकी तकलीफ की जिम्मेदार हो। आरवी अयांश के चेहरे के भाव और लफ्जों को समझने की कोशिश में थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वर्तिका की इस हालत की जिम्मेदार वो कब हुई, कब मेरे हाथों ऐसा कुछ हुआ, मुझे याद क्यों नहीं। न जाने कितने ही सवाल आरवी ने उस वक्त खुद से कर डाले। तभी आरवी ने वर्तिका की ओर देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक गए। विनीत को संभालते हुए अयांश ने कहा, संभालो विनीत खुद को, इतना कमजोर नहीं पड़ना है हमें, वर्तिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, उसे हमारी जरूरत है। अब तक अकेला संभाल रहा था, पर तुम्हारे साथ के बिना शायद मैं उसे ठीक नहीं कर सकता हूँ। हमें पहले जैसे बिल्कुल ठीक करना है उसे। ये सुनते ही विनीत फट से आयांश से अलग हुआ और अपने आंसू पूछते हुए बोला, हाँ हाँ आयांश, हाँ, दी को तो वैसे भी उनका विनीत संभाल रहे हैं, पसंद है ना? बी स्ट्रांग विनीत, बी स्ट्रांग। आयांश विनीत का गाल छूते हुए हाँ में सिर हिलाता है। तभी विनीत आयांश के हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, ये बताओ क्या हुआ दी को, और ये आरवी कैसे कसूरवार है? ये सुनते ही आयांश का जबड़ा कस गया। वो आरवी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, प्यार छीना था इसने वर्तिका से उसका, सब इसके जैसे स्ट्रांग नहीं होते विनीत, देखो इससे इसका प्यार दूर हो गया, फिर भी ये जिंदा है, पर वर्तिका और उसके प्यार के बीच आकर इसने उसे जिंदा जी मार दिया। हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है प्यार का छिन जाना। हमेशा से स्ट्रांग रहने वाली वर्तिका, तुम्हें स्ट्रांग बनाने वाली तुम्हारी वर्तु दी एक प्यार नाम के लफ्ज से हार गई, कमजोर पड़ गई। किसी को प्यार करने लगी थी वो, जिसके बीच ये आरवी आ गई। वर्तिका ने जिंदगी में जो भी उससे छिन गया उसका अफसोस कभी नहीं किया। यहाँ तक कि अपने मॉम डैड के जाने के बाद भी वो कभी हिम्मत नहीं हारी, खुद भी जी और तुम्हें भी पाला। पर जिस शख्स से वो प्यार करने लगी थी उसके ना मिलने के अफसोस से वो टूट गई। उसने ऐसा कदम उठा लिया मानो उस शख्स के अलावा उसकी जिंदगी जिंदगी नहीं रही। जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें वो कोमा में चली गई थी और अभी कुछ दिन पहले ही कोमा से बाहर आई, और आते ही उसकी जुबान से सिर्फ एक ही नाम निकला, आरवी। और जब इसकी तस्वीर उसे दिखाई गई तो उसकी बिगड़ती हालत ने साबित कर दिया कि उसकी उस हालत की वजह कसूरवार यही है। जब फिर उसे होश आया तो पता चला कि वो मेंटली डिस्टर्बेंस की शिकार हो गई है। दिमागी हालत ठीक नहीं है अभी वर्तिका की, कब क्या कर दे कोई पता नहीं। जो लड़की समझदार थी बहुत, किसी वजह से आज एक बच्ची बन बैठी है। आयांश के ये कहते ही विनीत की मुट्ठी गुस्से से भींच गई। उसने गुस्से से आरवी की ओर देखा। आरवी कुछ कहने को हुई कि विनीत उसकी बाहें पकड़ते हुए बोला, क्यों किया तुमने ऐसा मेरी दी के साथ? मेरी दी की ये हालत तुम्हारे वजह से है, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरी दी ने? आरवी नामे सिर हिलाते हुए बोली, नहीं विनीत, मैंने ऐसा।
आरवी बोल रही थी कि विनीत ने उसे झटक कर छोड़ दिया और शीशे वाली दीवार पर हथेली टिकाकर बोला, क्या से क्या बन गई मेरी दी, क्यों किया आरवी तुमने ऐसा, क्यों? आयांश, मैं मिल सकता हूँ क्या दी से? आयांश विनीत के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, नहीं विनीत, अभी नहीं मिल सकता, कोई रिस्क नहीं ले सकते, उसे कुछ याद नहीं है, हम सब उसके लिए अनजान बन चुके हैं, कोई याद नहीं उसे। ये सुनते ही विनीत हैरानी से क्या कहते हुए आयांश की ओर मुड़ते हुए बोला, दी को मैं भी याद नहीं, उनका वीनू भी याद नहीं? आयांश ने नामे सिर हिलाया और एक नज़र विनीत का पीला पड़ा चेहरा देख, उस पर झलक रहा उसका दर्द देख आयांश खुद को वहां रोक नहीं पाया, उसी वक्त वहां से जाने लगा। तभी आरवी भागकर आयांश के सामने आई, मिस्टर मेहरा मेरी बात सुनिए। आयांश आरवी की ओर भौहें से कोड़ते हुए देखता है। तभी आरवी फिर बोली, एक बार मेरी बात सुनिए, वो वर्तिका। तभी आयांश चिल्लाया, जस्ट शट अप, और आरवी को साइड में धकेल वहां से चला गया। आरवी आयांश को आवाज देते रह गई। तभी विनीत धन्य से घुटनों के बल वर्तु दी कहते हुए उस शीशे की दीवार से सटकर बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे और जुबां से लगातार एक ही नाम निकलता रहा, दी दी दी। विनीत की यह हालत देख आरवी की आंख छलक गई। आरवी ने आंखों के किनारे साफ किए और विनीत के पास आकर बैठी और कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, विनीत आप। तभी विनीत ने आरवी का हाथ छटक दिया और नीचे से उठ दूर होते हुए बोला, दूर रहो मुझसे और मेरी दी से भी दूर रहो, मैं तुम्हें अच्छी समझता था पर तुम बहुत बुरी हो, बहुत बुरी, दूर रहो। क्रमशः